आज है 16 मार्च दिन बुधवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। पाकिस्तान में एक बस में बम धमाका, 16 लोगों की मौत।
जो ही हमारी आवाज़ सुनी, हमारे बंदे वहाँ पे निकला है, हमारी गाड़ी आ गई है। अनऑफिशियली मैं बताना चाहता हूँ तकरीबन 30 बंदे जो है वो इंजर्ड है, मोर देन प्लस माइनस में हो सकते हैं। इसके अलावा अनऑफिशियली मैं फिर बताना चाहूँगा। फिर
जाट आरक्षण की मांग को लेकर जाट आरक्षण समिति की ओर से दी गई समय सीमा कल होगी खत्म। राज्यसभा में हुई आधार विधेयक पर बहस। और किंग फिशर एयरलाइंस में काम करने वाले कर्मचारियों की जिंदगी कैसे बदल गई।
चैटिंग होता है उस वक्त, रियलिटी को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो अगर एक पूरी कंपनी बंद होती है तो पूरे मार्केट में इंफॉर्मेशन होती है कि एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर डेस्परेट फॉर अ जॉब, तो उस वक्त बहुत लोग आपका एडवांटेज लेते हैं।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। पाकिस्तान के पेशावर में एक बस में हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए हैं और करीब 53 घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। ये धमाका तब हुआ जब यह बस सरकारी कर्मचारियों को लेकर उन्हें ऑफिस छोड़ने जा रही थी। वर्ष 2014 के दिसंबर महीने में पेशावर के स्कूल में हुए हमले के बाद वहाँ चरमपंथी हमलों में कमी आई थी, लेकिन इस साल दोबारा इनमें इजाफा देखा गया है। अमरीकी छात्र ऑटो वाम्बियार को उत्तर कोरिया में राज्य के खिलाफ अपराध करने के लिए 15 साल की कठिन परिश्रम की सजा सुनाई गई है। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के 21 वर्षीय वाम्बियार को जनवरी में उत्तर कोरिया का दौरा करते समय होटल से प्रचार चिन्ह की चोरी करने की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया था। बाद में सरकारी टीवी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक चर्च समूह ने उनसे यात्रा की निशानी लाने को कहा था। उन्होंने कहा कि यह मेरी जिंदगी की बड़ी भूल थी। पूर्वोत्तर नाइजीरिया में दो महिला आत्मघाती हमलावरों ने खुद को एक मस्जिद में उड़ा लिया, जिससे 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। हमले में कम 30 लोग घायल हुए हैं। यह हमला मैदुगुरी के उमारारी इलाके में हुआ, जहां चरमपंथी संगठन बोको हराम अक्सर हमले करता रहता है। फिलहाल अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मस्जिद के इमाम गुआनी क्यारी को अन्य घायलों के साथ अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उन्होंने बीबीसी से फोन पर बात की। उन्होंने कहा, मैं सुबह की नमाज करवा रहा था जब ये विस्फोट हुआ। हमने नमाज का पहला हिस्सा भी पूरा नहीं किया था जब पहला धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। फिलहाल मैं ये नहीं जानता कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं। हम सभी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। पहला विस्फोट मस्जिद के अंदर हुआ और दूसरा मेरे घर के बाहर। इस धमाके से मेरे सुनने की शक्ति प्रभावित हुई है। इस वक्त मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। मस्जिद के इमाम गुआनी क्यारी के शब्द। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मैडम तुसाद म्यूजियम का हिस्सा बन जाएंगे। इस साल अप्रैल से लंदन, सिंगापुर, हांगकॉक और बैंकॉक के मैडम तुसाद म्यूजियम में उन्हें देखा जा सकेगा। दुनिया भर में अपने मोम के पुतलों के लिए मशहूर म्यूजियम तुसाद की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व राजनीति में बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्हें 2015 में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट 10 लोगों में रखा था। बयान के मुताबिक म्यूजियम के कलाकारों ने इसी साल की शुरुआत में दिल्ली जाकर उनका माप लिया। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में हुए एक चरमपंथी निरोधी ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध मारा गया है, जबकि दो फरार हैं। पहले संदिग्धों ने पुलिस पर गोलियां चलाई थीं और उन्हें पुलिस ने एक फ्लैट में घेर लिया था। दक्षिण ब्रसल्स के फॉरेस्ट शहर में हुई इस कार्रवाई में बेल्जियम के 4 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने छापा पिछले साल पेरिस में हुए चरमपंथी हमले के सिलसिले में मारा था। इस हमले में 130 लोग मारे गए थे। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। और जैसा कि आपने मुख्य समाचारों में अमल से सुना, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी शहर पेशावर में हुए बम धमाके में कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। ये बम एक बस में लगाया गया था। प्रशासन का कहना है कि इस बम हमले में 53 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये धमाका उस समय हुआ जब ये बस सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर ले जाने के लिए आई थी। इस धमाके के बाद चले राहत अभियान के निदेशक मोहम्मद अयाज का कहना था,
जो ही हमारी आवाज़ सुनी, हमारे बंदे वहाँ पर निकला है, हमारी गाड़ी आ गई है, ठीक है। इनिशियली अनऑफिशियली मैं बताना चाहता हूँ तकरीबन 30 बंदे जो है वो इंजर्ड है, मोर देन प्लस माइनस में हो सकता है, ठीक है। वो इंजर्ड है जो LRH कैंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा अनऑफिशियली मैं फिर बताना चाहूँगा, फिर क्योंकि मोर देन 15-16 बंदे जो ऑन स्पॉट डेड हो चुके थे।
ये थे राहत अभियान के निदेशक मोहम्मद अयाज। इस बीच राज्य सरकार के प्रवक्ता मुश्ताक गनी का कहना था,
कोई 15 के करीब कीमती जानें जाया हुई हैं, शहादतें हुई हैं और 30 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं और ये तादाद बढ़ भी सकती है क्योंकि बस के अंदर सारे लोग बैठे हुए थे और बस के अंदर ये धमाका हुआ है।
तो राज्य सरकार के प्रवक्ता मुश्ताक गनी बता रहे थे कि बम धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मैंने इस हमले पर और जानकारी के लिए पेशावर फोन कर इज़ुल्लाह खान से और जानकारी मांगी।
असल बात यह है कि ये बस प्राइवेट उसमें है, ये वहाँ से ये जो दूर दराज इलाके हैं पिशावर के, वहाँ से लोग एक प्राइवेट बस उन्होंने हायर की हुई है कि जो उन इलाकों से इनको यहाँ पर पिशावर के जो दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उन तक पहुँचाती है। तो ये मलकंड रीजन जो एक नीम कबायली इलाका है वहाँ से ये रवाना हुई और फिर ये यहाँ पर जब पहुँची तो पिशावर का मरकज अगर आप कहें ना बिल्कुल न्यूक्लियस ही है। ये सुनहरी मस्जिद एक रोड है, सदर में कैंट का इलाका है। जब यहाँ पर पहुंची तो उधर इसमें धमाका हो गया। अब जो बम डिस्पोजल स्क्वाड वाले हैं वो ये कहते हैं कि शायद कोई ऐसा धमाका खेज मवाद था, जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो किसी एक सीट के नीचे रखा गया था जिससे धमाका हुआ है। वो कुछ ऐनी शाहिदीन से जब मेरी बात हुई तो एक स्टूडेंट है वो यहाँ पर एडमिशन के लिए उसी बस में बैठा हुआ था, वो पिशावर यूनिवर्सिटी आ रहा था। तो उसने कहा कि जब वहाँ पर पहुंची तो एक शख्स के पास बोरी थी और वो वहां से उतरने के लिए जब बस के अगले दरवाजे के पास पहुंचा तो उधर ही धमाका हुआ। अब ये उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि उस बोरी के अंदर कुछ था या सीट के कहीं आगे कुछ था, तो वो उससे धमाका हुआ और ये सारा नुकसान हुआ। इसमें जो ज्यादातर लोग थे वो पिशावर के बाहर के इलाकों के थे, मरदान से थे, चारसद्दा से थे, दरगई से थे, जो मुख्तलिफ इलाके हैं ये उन इलाकों से ये लोग थे, सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी ऑफिशियल थे, मुख्तलिफ जो सरकारी दफातर हैं उनमें ये काम करते थे।
और जिस तरह से सरकारी प्रवक्ता जो हैं पेशावर के, उनका ये कहना है, राज्य सरकार के प्रवक्ता जो हैं स्टेट गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, उनका ये कहना है कि मरने वालों की संख्या जो है बढ़ सकती है।
अभी मैं इस वक्त लेडी रेडिंग अस्पताल में ही मौजूद हूँ और थोड़ी देर पहले मेरी यहाँ के डॉक्टर से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ ऐसे मरीज हैं कि जो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, उनको इंटेंसिव केयर यूनिट्स में रखा गया है और ऐसी इतला भी पहुंच रही थी कि एक से दो अफराद उनकी मृत्यु हो गई है लेकिन अभी तक उसकी ऑफिशियली तस्दीक नहीं की जा रही थी। तो वो उसको देख रहे हैं कि जो फाइनल उसमें आ जाए तो उसके बाद ही ये मालूम हो सकेगा। इसके अलावा मेरी जो SSP ऑपरेशन है, सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस ऑपरेशन अब्बास मजीद मरवत से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि जो मरने वालों की तादाद है वो 16 तक अब है, क्योंकि उनका कहना था कि पुलिस ज़राए ने जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल से डेटा इकट्ठा की है उसके मुताबिक उनके पास 16 हलाकते हैं और 53 उसमें जख्मी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बढ़ सकती है, जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स में है उनको अभी तक वो दिया जा रहा है तो उससे बाद में मालूम होगा कि क्या उनकी सूरत हाल होती है, उनको जो मेडिकल एड है वो दी जा रही है इस वक्त।
और क्या इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी गुट ने ली है?
ये अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। इस हवाले से अफवाहें तो बहुत सारी हैं कि मुख्तलिफ जैसे नाम लिए जा रहे हैं लेकिन अब तक कोई ऐसी वाजिब ये नहीं है क्लियर सिचुएशन की किसी एक तंजीम ने जैसे मामूल से होते कुछ तरह का वाक्य होता है और वो इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं है कि कोई किसी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसी ने मीडिया को बराह रास्त या जो मेन काम कर रहे होते हैं उनको फोन करके कहा हो कि उसने जिम्मेदारी कबूल की है, अभी तक क्लियर ये नहीं है।
पेशावर में बम धमाका, 16 की मौत, 53 लोग घायल, ये थे पेशावर से अज़ीज़ुल्लाह खान। अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले पार्टियां जिस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, माना जा रहा है कि ये 60 के दशक के बाद पहली बार हो रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन ने अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में राष्ट्रपति पद की महत्वपूर्ण प्राइमरी चुनाव में निर्णायक जीत हासिल कर ली है। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी और की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में आगे हैं और हिलरी क्लिंटन पार्टी की उम्मीदवारी की रेस में आगे चल रही हैं। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं वाशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय।
गुस्सा, नफरत, मारपीट, नस्लवादी ताने, कहा जा रहा है कि अमरीकी राजनीति में इस तरह का भद्दापन 60 के दशक के बाद पहली बार दिखा है। पिछले एक हफ्ते में इसमें खासी तेजी आई उंगली उठी रिपब्लिकन रेस के फ्रंट रनर डोनाल्ड ट्रंप पर। कुछ ने कहा सियासी तौर पर उन्हें ये भारी पड़ सकता है। लेकिन मंगलवार को सबसे अहम राज्य यानी फ्लोरिडा में जब चुनावी बाजी बिछी तो आसार नजर आने लगे थे कि गोटियां ट्रंप के हक में हैं।
ट्रंप इस दुनिया में सबसे अहम व्यक्ति हैं।
ट्रंप थोड़े डरावने हैं, लेकिन एक वही हैं जो हिलेरी को हरा सकते हैं। हिलेरी क्लिंटन की तुलना में तो कोई भी अच्छा है।
फ्लोरिडा के स्थानीय सेनेटर मार्को रूबियो को अपने ही घर में ट्रंप से मात खानी पड़ी और वो उम्मीदवारी की रेस से हट गए हैं। ओहायो में ट्रंप जॉन केसिक से हार गए, लेकिन ये केसिक की पहली जीत है। देखा जाए तो ये रात ट्रंप के लिए काफी कामयाब रात थी।
हमें अपनी पार्टी को एकजुट करना है। इस समय हमारी रिपब्लिकन पार्टी की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लाखों लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं।
रिपब्लिकन रेस में टेड क्रूज नंबर 2 पर चल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ट्रंप को पकड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। डेमोक्रेट्स की कहानी में पहले कुछ ट्विस्ट नजर आ रहा था, लेकिन मंगलवार की रात हिलरी क्लिंटन की कामयाबी उन्हें अमरीकी इतिहास की पहली महिला उम्मीदवार बनने के काफी करीब ले आई और उनके निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप नजर आए।
हमारा कमांडर इन चीफ ऐसा हो जो कि देश की रक्षा करे, ना कि इसे शर्मिंदा करे।
लेकिन पूंजीवाद की जमीन पर खुद को सोशलिस्ट उम्मीदवार की तरह पेश करने वाले बर्नी सैंडर्स अभी सरेंडर के मूड में नहीं दिख रहे। रियल
चेंज, सही बदलाव ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर नहीं आता, बदलाव हमेशा नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर जाता है।
सैंडर्स के चाहने वालों की माने तो ये जंग जुलाई तक जारी रहेगी।
कहा तो ये लग रहा था कि 15 मार्च तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के हुक्मरानों के न चाहने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप अभी भी फ्रंट रनर बने हुए हैं और पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। वहीं डेमोक्रेट्स में हिलरी क्लिंटन की गाड़ी रफ्तार तो पकड़ चुकी है, लेकिन बीच में हिचकोले भी खा रही है। तो फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। ब्रजेश उपाध्याय, BBC वॉशिंगटन।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ और अब रुक करते हैं भारत का। भारत में आज आधार विधेयक को लेकर राज्यसभा में जोरदार बहस हुई। हालांकि ये बिल लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन विपक्ष का आरोप था कि इसे विवादित तरीके से पेश किया गया है। विपक्ष के नेताओं ने इस बहस में अपने अलग अलग तर्क रखे। जहां कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इसे सिर्फ एक पहचान पत्र मात्र की संज्ञा दी, वहीं दूसरे वक्ताओं ने आशंका जताई कि आधार के बाद दूसरे पहचान पत्रों का क्या होगा। मैंने इस बारे में जानकारी के लिए सलमान रावी से बात की।
देखिए, सबसे पहले तो ये लोकसभा में पारित हो चुका है और लोकसभा से ये बिल राज्यसभा के अनुमोदन के लिए आया था और अरुण जेटली ने सबसे पहले जब इसको इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा में और उन्होंने बताया कि क्या पर्पस है इस बिल का और उनका कहना था,
द पर्पस ऑफ दिस बिल इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट मनीज बाय सब्सिडीज।
जेटली कह रहे थे कि सब्सिडी जो मिलती है लोगों को, गरीब लोगों को, वो उन तक पहुंच पाए, जैसे कि LPG के सिलेंडर्स की सब्सिडी है या और भी दूसरी जो स्कीमें हैं। लेकिन विपक्ष के लोग ये ऑब्जेक्शन उठाते रहे, खासतौर पर जयराम रमेश जो पिछली सरकार में UPA की मंत्री भी रहे, उन्होंने एक पॉइंट उठाया और ये कहा कि ये सब्सिडी वाली बात नहीं है, इसमें और भी कुछ है।
इट्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये तय नहीं करेगा कि आप सब्सिडी के लायक हैं कि नहीं, ये कहेगा कि जावेद अली खान आप जावेद अली खान हैं, आप और कोई व्यक्ति नहीं है, ये आइडेंटिटी का एक प्रूफ है।
जयराम रमेश को आपने सुना अभी कह रहे थे कि ये सब्सिडी नहीं, ये सिर्फ एक ID प्रूफ है, एक पहचान पत्र है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के KC त्यागी, उन्होंने सदन में मौजूद जयंत सिन्हा की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि उनके पिता ने भी इसको अपोज किया था, इस बिल को।
मैं तो पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, जो बिल इनके बनाए हुए हैं वो पड़े हुए हैं, वो अब आपके सामने आते हैं कंसीडरेशन के लिए। जयंत सिन्हा जी बैठे हुए, इनके जो काबिल पिताजी हैं हम लोगों के साथ रहे लंबे समय तक, वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनका लिखित नोट है कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं पास होना चाहिए। तमाम विकसित देशों ने बायोमेट्रिक डाटा पर आधारित विशिष्ट पहचान पत्र बनाने का फैसला किया, उन्हें इसके खतरे का एहसास हुआ तो उन्होंने प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया।
वहीं समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल, उन्होंने ये बात पूछी कि क्या यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनने के बाद क्या पुराने जो पहचान पत्र हैं उनका फिर क्या होगा,
क्योंकि इसके पहले भी ओबलाइज करने के वोटर ID में बहुत लोगों को ओबलाइज किया गया, हमारा कार्ड नहीं बना। अगर इन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया तो कल अगर हमारे पास पैन कार्ड है, बर्थडे सर्टिफिकेट है, वोटर आईडी है, बैंक की पासबुक है, ये कह देंगे सब बेकार। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस देश के नागरिक भी नहीं। ये तो ऐसी चीज हो रही है, ये कहीं ना कहीं कुछ और संकेत दे रही है कि इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल करने की आपकी योजना है।
मगर सीपीएम के सीताराम येचुरी ने, अरुण जेटली ने जब अपना जब भाषण शुरू किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक बहुत अहम हिस्सा है इसमें नेशनल सिक्योरिटी का भी, जो यूनिक आईडी में है, कि वैसी सूरत में क्या सरकार करेगी, वो उस बिल में मेंशन किया गया है। इस पर सीताराम येचुरी का कहना था,
नाउ व्हाट कुड बी डिफाइंड एज नेशनल सिक्योरिटी इज लेफ्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे।
सीताराम येचुरी ये कह रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर पहले भी जो सरकारें रही हैं, कहीं पर ज्यादतियाँ हुई हैं, उन्होंने मीज़ा का उदाहरण दिया कि उसके तहत उन्होंने ये भी पॉइंट आउट कराया कि खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली भी जेल जा चुके हैं, और गुज़िश्ता दिनों में जो दिल्ली में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो कुल मिलाकर के बिल तो वैसे तो राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन इसमें जयराम रमेश द्वारा लाए गए जो संशोधन थे वो भी पास हुए और उसके बाद इस बिल को पास कर दिया गया।
ये थे सलमान रवि। उधर हरियाणा में एक और जाट आरक्षण की मांग को लेकर जाट आरक्षण समिति की ओर से दी गई समय सीमा कल खत्म हो रही है। वहीं राज्य सरकार जाट आरक्षण बिल को विधानसभा में पेश करने की तैयारी में है। इस बीच राज्य सरकार ने हिंसा की आशंका के चलते वहां कॉलेज और स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। मैंने इस बारे में और जानकारी के लिए बात की चंडीगढ़ में मौजूद स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा से।
आज जाट आरक्षण समिति के लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना ये है कि हमारा कल का जो वक्त खत्म होगा उसके बाद हम मीटिंग करेंगे और ये देखेंगे कि हम कल तक, ये भी उम्मीद है कि कोई ना कोई रूपरेखा जाट आरक्षण बिल की भी विधानसभा में आ चुकी होगी, उसके बाद उनकी मीटिंग होगी तो वो देखेंगे कि आगे उन्हें क्या करना है। लेकिन उसने एक और मांग उन लोगों ने जोड़ दी है जिससे सरकार ने अपना कोई रवैया अभी साफ नहीं किया है, वो ये है कि जो एक तो 30 लोग मरे उनमें से 18 जाट थे और 12 नॉन जाट थे, उन लोगों को एक तरह से आप शहीद घोषित करके उनको मुआवजे का कुछ ना कुछ रास्ता निकालें, नौकरियां दें उनको, परिवारों को मुआवजा दें। और दूसरा ये कि करीब 3,000 केसेस इस दौरान दर्ज हुए थे हिंसा के दौरान, तो उन 3,000 केसेस में ऐसे केस जहां जिनमें कि कोई बहुत हीनस मामला ना हो, उन केसेस को तुरंत सरकार को वापस ले लेना चाहिए, और ऐसे केसेस जिनमें कुछ गंभीर बात हो सकती है उनकी पहले जांच हो पूरी तरह और जांच के बाद ही आगे कानूनी प्रक्रिया को बढ़ाया जाए।
जी, वहीं ऐसी खबरें आ रही हैं कि कल जो है विधानसभा में जाट आरक्षण बिल पेश होगा, तो सरकार ने जाटों को आरक्षण देने के लिए क्या प्रावधान किए हैं, कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं?
जी, अभी जो सरकार ने जो रूपरेखा तैयार की है उसमें उन्होंने बड़े संभल के एक नई कैटेगरी बनाई है जिसे ओबीसी सी बोलते हैं। मतलब अभी तक ओबीसी की दो कैटेगरी पहले से हैं, ए और बी। ए में करीब करीब 70 जातियां हैं जिसमें ये बड़ी यादव वगैरह जातियां नहीं, दूसरी में सैनी यादव जो बड़ी संख्या में हैं वो है बी कैटेगरी में। सी एक बिल्कुल नई कैटेगरी बना के जाटों को उसमें 10% आरक्षण की बात की जा रही है। इसमें जाट हैं, विश्नोई हैं, सिख हैं, इस तरह के 4-5 कम्युनिटीज को इसमें 10% के बीच में लाया जा रहा है। कांग्रेस ने जो बिल बनाया था उसमें उनको ओबीसी की श्रेणी में नहीं लिया गया था, उसको स्पेशल बैकवर्ड कम्युनिटी के सेंस में लिया था और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था क्योंकि वो इस ओबीसी के बाहर जाके 10% वाला था। अभी इस ओबीसी के अंदर अंदर 10% देने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं अपनी जगह बना पाए। और दूसरा एक प्रस्ताव ये ला रहे हैं कि एक जो कमेटी बनती है इसके असेसमेंट के लिए कि किस जाति को लाया जाए उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देंगे।
वहीं ये खबरें आ रही हैं कि जाट आंदोलन फिर से भड़क सकता है, फिर से वो आंदोलित होंगे, इसकी आशंका के चलते वहां पर स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, क्या जानकारी है?
जी, अभी तक मुझे जानकारी मिली है कि रोहतक में कॉलेजेस बंद कर दिए हैं क्योंकि बहुत सारे जो केसेस हैं, मामले हैं, वो वहीं के कॉलेज के स्टूडेंट्स उनके ऊपर दर्ज हुए थे, तो कहीं ऐसा कुछ ना हो कि जो स्थिति पनप रही है उसकी वजह से वहाँ कोई दोबारा से भड़क जाए, तो उन कॉलेजेस को बंद कर दिया है। और जब तक केसेस का मामला नहीं निपटता, जब कल आ चुका होगा जाट आरक्षण की रूपरेखा और सरकार का रवैया और उसके बाद जो 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 आरक्षण कमेटी बात कर रही है उसको देखते हुए फिर से 2-3 दिन बाद उसे वो रिव्यू करेंगे।
ये थे चंडीगढ़ से स्थानीय पत्रकार संजय शर्मा। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के देश छोड़ने और उन पर बैंकों के बकाया हजारों करोड़ रुपए की चर्चा संसद तक पहुंच चुकी है, पर इन आवाजों में किंगफिशर एयरलाइंस में काम करने वाले उन लोगों का जिक्र तक नहीं जिनकी नौकरी चले जाने और लाखों रुपए बकाया होने की वजह से जिंदगी ही बदल गई। ऐसी ही एक महिला नीतू शुक्ला से बात की हमारी संवाददाता दिव्या आर्या ने।
मैंने किंगफिशर ज्वाइन किया था 1st August 2006 में और मैं एंड किंगफिशर के साथ थी। तो इवन दो मिस्टर माल्या बोलते हैं कि ये उनका ड्रीम था, ये एक्चुअली उनसे ज्यादा हम सब एम्प्लॉयज का ड्रीम था, क्योंकि उन्होंने किंगफिशर का साथ छोड़ दिया लेकिन हम लोग ने एंड तक नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से लास्ट फ्लाइट था 26 September 2012 को। उस दिन फाइनली आई थिंक इंजीनियर्स मैनेज नहीं कर पा रहे थे फाइनेंसेस, क्योंकि इतने महीनों की बैकडेटेड सैलरी काफी टाइम से आ रही थी और बहुत ज्यादा ड्यूज हो गए थे, और उसके ऊपर हमें अपने खुद के पैसे खर्च करके ऑफिस जाना, फ्लाइट पे जाना बहुत महंगा पड़ रहा था। तो आई थिंक उस दिन उन लोग ने स्ट्राइक की थी एंड लास्ट फ्लाइट था।
तो जब ये जानकारी सामने आने लगी कि डेट बढ़ा है, सैलरीज नहीं पे हो रही हैं, तो उस वक्त आपने क्या सोचा, क्या उस वक्त मूव करने का सोचा आपने?
एक्चुअली उस टाइम ना एकदम कैच 22 सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी सैलरीज बैकडेटेड आने लगते हैं, तो वो एक दिन में नहीं होता है। तो पहले आपके सैलरीज सपोज प्रीवियस मंथ के 28 को आते हैं, तो उसके बाद फिर दे स्टार्ट कमिंग ऑन द 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फिर धीरे धीरे वो 15 तक शिफ्ट होता है, फिर 30 तक होता है। बिफोर यू रियलाइज आपका कंपनी के ऊपर ऑलरेडी 3-4 months का सैलरी ड्यू रहता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप सोचते हो कि नहीं, अगर मेरी कंपनी उस वक्त मुझे प्रॉमिस करती जाती है कि नहीं नहीं थिंग्स विल इम्प्रूव, सब सही हो जाएगा, हमको फंडिंग मिल रही है, हम ये कर रहे हैं, हैंग इन देयर, प्लीज डोंट लीव, सबने हमें ईमेल पे रीअश्योरेंसेस दिए हैं, या तो हमारे EVP देते थे या CEO देते थे या खुद मिस्टर विजय माल्या देते थे। तो आप कहीं ना कहीं उस पर बिलीव करने लगते हैं और सोचते हैं कि नहीं, आई शुड गिव इट अ चांस, बिकॉज होप थी कि चलो कुछ नहीं तो एटलीस्ट मेरे जो इतने सारे पैसे अटके हैं वो तो मिल जाएंगे मुझे।
तो जब ये फाइनली क्लियर हो गया कि ये एयरलाइंस बंद होगी, किस तरह से आपने इस इन्फॉर्मेशन को या इस रियलिटी को रिसीव किया?
बहुत चैटिंग होता है उस वक्त, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो आपकी एक जॉब नहीं जाती है, आप इट्स अ डेथ ऑफ अ ड्रीम, आपका जो एक सपना होता है वो सपना मर जाता है उस वक्त। कि अगर एक पूरी कंपनी बंद होती है तो पूरे मार्केट में इन्फॉर्मेशन होती है कि एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर डेस्परेट फॉर अ जॉब बिकॉज दे हैव टू गेट समथिंग, तो उस वक्त बहुत लोग आपका एडवांटेज लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग सफर करते हैं जिनका एज ब्रैकेट चेंज हो जाता है और उनको जॉब मिलना इजी नहीं होगा बियॉन्ड अ सर्टेन एज। सेकेंडली वो सफर करते हैं जिनका स्पेशलाइज जॉब्स हो। उसके बाद वो लोग सफर करते हैं जो अपना प्लेस ऑफ डोमिसाइल छोड़ के ना जा पाए। मेरे लिए ऑल 3 grounds वर एप्लीकेबल। मतलब 2 साल तक तो मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरा पूरा लाइफ जब से मैं 3rd standard में थी और टीचर्स पूछते थे अपना आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उस वक्त उस जमाने में जब इतना एक्सपोजर भी नहीं था एविएशन के लिए, तब मैं लिखती थी कि मुझे एयरहोस्टेस बनना है। तो बेसिकली मेरा करियर एविएशन में कुछ 19 years का है।
तो फिर आपने क्या रास्ता निकाला, अपने आप को कैसे आपने रीइन्वेंट किया एक तरीके से?
फाइनली 2 साल अपने साथ स्ट्रगल करने के बाद कि मैं क्या करूँ, इवेंचुअली मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन की है। तो कंपैरेटिवली हाँ, मैं बहुत लकी हूँ, पर ये बोलते हुए मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो करने के लिए पैदा हुई थी वो मैं नहीं कर रही।
किंगफिशर एयरलाइंस बंद होने के बाद बदली कर्मचारियों की जिंदगी, पूर्व महिला कर्मचारी नीतू शुक्ला से बात करी थी हमारी संवाददाता दिव्या आर्या। इनका भी कश्मीर इस श्रृंखला के तहत आजकल आप सुन रहे हैं अपनी जड़ों से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की आप बीती। अब तक राधिका कौल और राहुल पंडिता के पोस्टकार्ड आपने सुने। आज सुनिए कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू होने से पहले कश्मीर घाटी के साहित्यिक माहौल के बारे में एक हिंदी कवि और लेखक डॉक्टर अग्निशेखर की यादें।
वो दृश्य मैं आज तक नहीं भूला हूं। मेरे मोहल्ले के पुल पर कुछ जुनूनी लड़कों ने मेरे परिचित ढाकिए से चिट्ठियों का पुलिंदा छीनकर उसे नदी में फेंक दिया। मैंने देखा तो लगा जैसे आकाश से परिंदे गिर रहे हों। वे हिंदुस्तान की चिट्ठियां थीं जो कुछ दूर तक पानी में तैरी और फिर डूब गईं। उनमें जरूर मेरे नाम की भी कोई चिट्ठी रही होगी, किसी हिंदी लेखक की, कवि की, या किसी पत्र पत्रिका के संपादक की। डाकिया उल्टे पांव भागा और मैंने भी रास्ता बदल लिया था। कभी डॉक्टर नामवर सिंह को कश्मीर आना होता तो पहले मुझे पत्र मिलता, उनके साथ बैठकें होती घर में, कॉफी हाउस में, कहीं भी। बाबा नागार्जुन तो लंबे अरसे तक 1982 में क्षमाकोल के घर में जमे रहे। कितने कविता पाठ हुए, संवाद हुए। कभी कहानीकार ज्ञान रंजन ने मेरे घर के कमरे की खिड़की से दिखने वाली इस नदी में एक दिया शुभकामनाओं का बहाया था अपने एक पत्र में। उस घटना के बाद से मुझे खिड़की से दिखने वाली नदी किनारे मंदिर के आंगन का चिनार किसी उदास पूर्वज सा लगता। पेड़ों के झर रहे पत्ते मुझे उनके आंसू लगते। पहाड़ों की बर्फ कफन की याद दिलाती। आकाश में बादलों से भय लगता। आए दिन अलगाववादियों के जुलूस, हजारों हजार गुस्साए हाथियों की चिंगाड़ के समवेत नारों सा कोलाहल दहला देता। हवा बदल चुकी थी, हमारी साहित्यिक गोष्ठियां ठप थीं। वर्ष 1990 तक आते आते कश्मीर की हवा में घृणा और आतंक के बारूद की गंध भर गई थी। करीबी मित्रों, पड़ोसियों और परिचितों के साथ संबंधों का पारंपरिक रूप शिल्प, वाक्य विन्यास चौंकाने की हद तक बदल चुका था। वातावरण में संशय था, मित्रताएं संदिग्ध हो चली थीं। हवा में जो नारे गूंज रहे थे उनका निहितार्थ हमारे लिए साफ था। हम यानी अल्पसंख्यक, जो उनको मान्य नहीं थे, हम जिन्हें हेय और संदेह की नजरों से देखा जाने लगा था। एक नागरिक और एक संवेदनशील हिंदी रचनाकार के नाते हमने अपनी अभिव्यक्ति पर घर से बाहर सेंसर लगाना बेहतर समझ लिया था। कश्मीरी और उर्दू लेखकों, कवियों, नाटककारों तथा बौद्धिकों में रेडियो कश्मीर, दूरदर्शन अथवा कॉफी हाउस की बैठकों में एक ठंडी चुप्पी छाने लगी थी। विभाजन की रेखा खींच रही थी। नाम और धर्म से लेखक मन ही मन अभिहित होने लगे थे। तय था कि अब हमें जड़ से उखाड़ दिए जाने की पूरी तैयारी है।
कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां कर रहे थे हिंदी कवि और लेखक डॉक्टर अग्नि शेखर। और कश्मीर पर आप विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला को कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में दोबारा सुन सकते हैं। और अब बात खेलों की। आईसीसी वर्ल्ड T20 में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच मुकाबला चल रहा है और इंग्लैंड एक विकेट के नुकसान पर 47 रन बना चुका है। उधर आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 55 रनों से हराया और उसने पहला सुपर 10 मुकाबला जीत लिया है। कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उर्दू सेवा के सहयोगी अब्दुल रशीद शकूर। कैसा रहा मैच शकूर साहब?
जी, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानी टीम ने और पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग जो पिछले कई मैचों में नाकाम रही थी वो इस बार बहुत अच्छा खेली। अहमद शहजाद ने निस सेंचुरी स्कोर की, 52 रन किए। हफीज ने 64 किए और शायद आफरीदी मेला लूट गए, उन्होंने 49 रन किए, 49 रन किए सिर्फ 19 गेंदों पर, 4 चौके 4 छक्के लगाए। और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मौजूद जो भी जितने भी शायकीन थे, तमाशाई थे, उनको एक जबरदस्त तफरी फराहम की आज पाकिस्तान के अपने पहले ही मैच में। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसने बांग्लादेश की बैटिंग को जमने नहीं दिया। तो पाकिस्तान की एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा आगाज इस आईसीसी वर्ल्ड T20 में। और अब उसका अगला मैच भारत से इसी ईडन गार्डन्स कोलकाता में होगा 19 तारीख को
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ये थे हमारे साथ कोलकाता से अब्दुल राशिद शकूर। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के पेशावर में एक बस में हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए हैं और करीब 53 घायल हुए हैं।
अमरीकी छात्र ऑटो वाम्बियार को उत्तर कोरिया में राज के खिलाफ अपराध करने के लिए 15 साल के कठिन परिश्रम की सजा सुनाई गई है। वाम्बियार को जनवरी में उत्तर कोरिया का दौरा करते समय होटल से प्रचार चिन्ह की चोरी करने की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया था। पूर्वोत्तर नाइजीरिया में दो महिला आत्मघाती हमलावरों ने खुद को एक मस्जिद में उड़ा लिया, जिससे 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हमले में कम से कम 30 लोग घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। 9:30 बजे घटना चक्र में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।